हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उस राक्षस के अंश विक्रांत रंधावा ने जिन महाराज से कहा, मैं जानता हूँ तारा परी यहाँ किसी भी पल आ सकती है। और सुनो, तारा परी ने तुम्हें खबर नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें ये खबर देना चाहता हूँ। तारा परी माँ बनने वाली है, लेकिन ये खुशी की खबर केवल कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि बहुत जल्द मैं उसके पेट में पल रहे बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और साथ ही साथ उसे अपने साथ परीलोक ले जाऊंगा। और अगर बूढ़े जिन तूने मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू इस समाधि में बैठने के लायक भी नहीं रहेगा। ऐसा कहकर विक्रांत पागलों की तरह हंसने लगा। विक्रांत को देखकर उसके दादाजी महाराज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तभी उसके दादाजी महाराज ने बिना सोचे समझे विक्रांत की ओर अपनी जादुई शक्तियों से प्रहार किया, जिससे विक्रांत रंधावा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपनी काली शक्तियों द्वारा अमन के दादाजी जिन महाराज के हाथ पैर और मुंह बांध दिए और उन्हें पेड़ के तने में ही कैद कर दिया और इस तरह की जादुई अदृश्य शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे उन्हें वहाँ कोई भी न ढूंढ पाए और न ही उनकी कोई शक्ति काम कर पाए। अमन के दादाजी महाराज सोच ही रहे थे कि तभी अमन बोला, क्या हुआ दादाजी, आप मुझे उस राक्षस के बारे में और कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? उस राक्षस की इतनी हिम्मत हो गई कि वो राक्षस आपके पास तक आ गया। बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए, वो राक्षस दिखता कैसा है और कहाँ है, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। तब उसके दादाजी महाराज ने अमन से कहा, बेटा तुम अभी कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। अब केवल तुम्हारे पास 10 मिनट ही बचे हैं, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द तालाब में नहाकर शुद्ध होना होगा और फिर समाधि में बैठना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास और शक्तियाँ नहीं होंगी, तुम उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर पाओगे और उसके सामने नहीं टिक पाओगे। हालांकि समाधि में शक्ति हासिल करने के बाद भी तुम्हारे पास केवल कुछ ही शक्तियाँ होंगी, उनके द्वारा वो राक्षस नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उस राक्षस की मौत अगर किसी के हाथों होगी तो वो होगी तुम्हारे वंशज के हाथों। क्या? ये खबर अमन के लिए काफी हैरानी वाली थी। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे वंशज के हाथों? लेकिन वो तो अभी पेट में है और भला वो छोटा सा बच्चा उसे इतने बड़े भयानक राक्षस को कैसे मार सकता है? जिस राक्षस का मुकाबला आप नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई और नहीं कर पाएगा, उसे राक्षस को क्या मेरा छोटा सा मासूम बच्चा मारेगा? अमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अमन को लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा जो कि अभी पेट में है वो उस राक्षस की जान लेगा, लेकिन अगर उसके दादाजी महाराज इस बात को कह रहे थे तो ये बात सच थी। अमन को इस बात पर यकीन करना ही था। तब उसके दादाजी महाराज बोले, बेटा मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारा वंशज ही उस राक्षस की जान ले सकता है। और एक और बात तुम मेरी ध्यान से सुनो, ये 7 दिनों की समाधि में जो तुम तपस्या करने वाले हो, इसमें तुम्हें अदृश्य होकर तपस्या करनी होगी। इस बगीचे में तुम्हारे आसपास कोई भी आए या जाए, तुम्हें किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उस राक्षस ने भले ही मेरे हाथ पैर बांध दिए हों, लेकिन मेरे मुंह को तिलिस्मी पत्थर की शक्ति ने खोल दिया है। तो मैं तुम्हारे आसपास अपने मंत्रों से ऐसा घेरा बनाऊंगा कि अगर वो राक्षस एक बार फिर से यहाँ आ गया तो वो तुम्हें नहीं देख पाएगा और न ही कोई इंसान तुम्हें देख पाएगा, और तुम 7 दिनों तक अपनी तपस्या पूर्ण कर पाओगे। अपने दादाजी महाराज की बात सुनकर अमन खुश हो गया। लेकिन दादाजी महाराज, आप मुझे ये तो बताइए कि मैं आपको किस तरह से आज़ाद करा सकता हूँ? आपके हाथ पैर तो अभी भी बंधे हुए हैं और तिलिस्मी पत्थर अब फिर से काम नहीं कर रहा है। अमन की बात सुनकर उसके दादा जिन महाराज मुस्कुराए, बेटा तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मुँह तो खुल ही चुका है, मैं अपनी तपस्या मुँह के द्वारा भी कर सकता हूँ। और रही बात मेरे हाथ पैर खुलने की, तो जैसे ही 7 दिनों के बाद तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, तब तुम अपनी शक्तियों द्वारा मुझे छुड़ा पाओगे। अपने दादा की बात सुनकर अमन ने सिर हिला दिया। ठीक है दादाजी महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं अभी तालाब में शुद्ध होकर आता हूँ और फिर तपस्या में लीन हो जाता हूँ। अपने दादा का आशीर्वाद लेकर वो सरोवर में नहाने के लिए चला गया और उसके बाद ठीक बरगद के पेड़ के तने के पास बैठकर तपस्या में बैठ गया। इतने में उसके दादाजी महाराज ने अपने मंत्रों का उच्चारण करके अमन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उस घेरे को कोई भी आम इंसान, कोई भी काली शक्ति, चाहे कितनी भी ताकतवर हो या कमजोर हो कोई भी नहीं भेज सकता था और न ही अमन को देख सकता था या महसूस कर सकता था। अमन को भी किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती थी और न ही कोई उसे दिखाई दे सकता था। जल्दी ही अमन ठीक 3 बजे एक गहरी तपस्या में लीन हो गया। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी ने तारा से कहा, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा बुझे मन से दरवाजे की ओर एक बार फिर देखती हुई अपने कमरे में जाने लगी। तारा इस उम्मीद से दरवाजे की ओर देख रही थी कि काश अमन लौट आए और वो उसे फिर से गले से लगा ले, क्योंकि तारा को अभी से ही अमन की बहुत याद आनी शुरू हो गई थी। उसका दिल बेचैन हो उठा था, लेकिन अब वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अमन इतनी आसानी से अब वहाँ वापस नहीं आने वाला था, क्योंकि वो करिश्मा जी और अमन के व्यवहार को देखकर इतना तो समझ ही चुकी थी कि जरूर इन दोनों में कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जो अमन को इस तरह से जाना पड़ा था। इसका तो खैर वो पता लगा ही लेगी, लेकिन अभी फिलहाल उसे अपने कमरे में जाना चाहिए और वहाँ जाकर चेंज करके इस बारे में सोचना चाहिए कि कल से वो अपनी जांच किस तरह से शुरू करेगी और करिश्मा जी को क्या बहाना देगी, क्योंकि उसे बगीचे में जाना था। तारा को बगीचे में जाकर जिन महाराज से मिलना था और उनसे करिश्मा जी के पति के साथ साथ उस राक्षस के अंश के बारे में पता लगाना था कि वो राक्षस का अंश आखिर किसके अंदर है। कुछ सोचते हुए तारा परी जल्दी ही अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर जैसे ही उसकी नज़र खाली बिस्तर की ओर गई तो उसका दिल रोने लगा, क्योंकि अमन के बिना उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि शायद अमन अभी आ जाए और उसे फिर से प्यार करे, उसे यहाँ किस करे, वहाँ किस करे, हमेशा उसके आस पास रहे। सच तो ये था, जब भी अमन तारा के पास रहता था तारा को हमेशा ऐसा लगता था मानो वो कितने ही मजबूत घेरे में हो, कितने ही मजबूत रक्षा कवच में हो। अमन का साथ तारा को बहुत पसंद आता था। तारा सोचने लगी कि अपना मकसद पूरा होने के बाद तो वो अमन को छोड़कर चली जाएगी, तो क्या परी लोक में वो अमन के बिना रह पाएगी। तारा को कभी कभी ये सवाल जैसे ही आता था वो उसके दिलो दिमाग को एकदम से छलनी कर जाता था, क्योंकि अमन के बिना रहने के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था।
तारा जल्दी ही कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि खाना तो आज वो अमन के साथ पहले ही खा चुकी थी तो खाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। करिश्मा जी ने पहले ही उसके कमरे में एक ग्लास दूध भिजवा दिया था, और क्योंकि करिश्मा जी भी आज रात को तारा के साथ समय नहीं बिता सकती थी, क्योंकि एक तो अमन घर पर नहीं था और साथ ही साथ तारा अब अपने कमरे में सो गई थी, तो करिश्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर तारा इस वक्त रात को सोएगी तो वो अगली सुबह ही उठेगी और करिश्मा जी अपना काम खत्म करके आसानी से आ जाएगी, क्योंकि करिश्मा जी आज फिर किसी जंगल में अपने पति को ढूंढने के लिए जाने वाली थी। वहीं विक्रांत रंधावा, जो कि शहंशाह की तरह अमन के ऑफिस में था, ऑफिस टाइम पूरा होने के बाद वहां से निकल आया और उसके दिल में एक अजीब तरह की गुदगुदी सी हो रही थी। उसे पता था कि आज अमन उसके जाने से पहले ही निकल चुका होगा, क्योंकि अमन पहले ही ऑफिस में उससे विदा लेकर गया था और अमन ने उसे बता दिया था कि जब तक वो घर पहुंचेगा तब तक वो निकल चुका होगा, तो इसीलिए विक्रांत रंधावा बहुत खुश था। उसकी खुशी की आज कोई सीमा नहीं थी। जल्दी ही विक्रांत रंधावा अमन के बंगले में पहुंच चुका था और जैसे ही उसने अपना पहला कदम बंगले के अंदर रखा उसे अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ और वो समझ गया कि घर पर कोई नहीं है, केवल 2-4 नौकर हैं जो कि अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर में सोए हुए थे, और साथ ही साथ उसने तारा को सूंघ लिया था और पता लगा लिया था कि तारा इस वक्त अपने कमरे में है। हमेशा की तरह एक नौकर विक्रांत रंधावा से खाने के लिए पूछने आया, लेकिन विक्रांत रंधावा ने उसे मना कर दिया। तब उसने पूछा, करिश्मा आंटी कहाँ है? तब नौकर ने जवाब दिया, करिश्मा जी पार्टी में गई हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक आप आ गए तब तक मैं आपको खाना वगैरह गर्म करके खिला दूँ। उस नौकर की बात सुनकर विक्रांत मुस्कुराने लगा और बोला, नहीं नहीं, खाना गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बाहर खाकर आया हूँ। ऐसा कहकर विक्रांत अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर जल्दी ही उसने अपने आप को भारी भरकम सूट वगैरह से आज़ाद कर लिया और हल्के नाइट कपड़े पहनकर वो तारा के कमरे की ओर चल पड़ा। आज उसने किसी भी तरह का धुएं का रूप नहीं लिया था, क्योंकि धुएं का रूप वो तब लिया करता था जब अमन तारा के साथ हुआ करता था, लेकिन आज तो अमन उसके साथ था ही नहीं। अगर कोई कमरे में था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ तारा परी और उसका खूबसूरत जिस्म, जिसकी चाहत न जाने कितने जन्मों से विक्रांत को थी।